कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरावन यमुना जमुना तीरावन चारे राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 Thank you.
चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में छठे स्कंद के पहले अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी, तो इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री विष्णु दूता उचुहु यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, वृतधर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं। श्री विष्णुदूता उचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, वृतधर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं। श्री विष्णुदूता उचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, वृतधर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं। श्री विष्णु दूतः उचुः भगवान विष्णु के अहोभाग्य दूतों ने कहा, यूयम आप सभी वै निसंदेह धर्मराजस्य धर्म के ज्ञाता यमराज के यदि यदि निर्देशकारिणः आज्ञापालक ब्रुत तो कहो धर्मस्य धार्मिक सिद्धांत का नह हमसे तत्वं सत्य यत जो च भी अधर्मस्य अधार्मिक कार्यों का लक्षणम लक्षण। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अहोभाग्य विष्णु दूतों ने कहा, वैसे ये शब्द का ट्रांसलेशन ठीक नहीं है, महाभाग्य होना चाहिए था, ये अहोभाग्य हिंदी ट्रांसलेशन ठीक नहीं। अहोभाग्य महाभाग विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। ये तुम शब्द भी ठीक नहीं, यूयम आपके लिए किया जाता है आदर देकर, तो विष्णु दूतों ने ऐसे नहीं कहा कि तुम लोग ऐसे हो, तो यूयम आदर के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर आप आना चाहिए था, ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं। तात्पर्य, यमदूतों से विष्णु दूत की यह जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवक को अपने स्वामी के आदेशों को जानना चाहिए। यमराज के सेवक यमराज के दूत होने का दावा कर रहे थे, अतः विष्णु दूतों ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनसे धर्म तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करने के लिए कहा। एक वैष्णव इन सिद्धांतों को पूर्ण रूपेण जानता है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों से भली भांति अवगत होता है। परम भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत है। जिन लोगों ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने की बजाय भौतिक प्रकृति के सिद्धांतों की शरण ले रखी है, वे सब अपवित्र हैं। चाहे उनका भौतिक पद कुछ भी हो, वे धर्म के सिद्धांतों से अनजान रहकर कृष्ण की शरण में नहीं जाते, अतएव वे पापी धूर्त मनुष्यों में अनजान रहकर मनुष्यों में अधम तथा समस्त ज्ञान से विहीन मूर्ख माने जाते हैं। इसको दोबारा पढ़ना चाहिए ना, थोड़ी अच्छी तरह से समझ जाए। वे धर्म के सिद्धांतों से अनजान रहकर कृष्ण की शरण में नहीं जाते, अतएव वे पापी धूर्त मनुष्यों में अधम तथा समस्त ज्ञान समझे जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रहत ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। जिसने कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं की, वे धर्म के असली सिद्धांत को नहीं जानता, अन्यथा वह शरण ग्रहण कर चुका होता। विष्णु दूतों द्वारा पूछा गया प्रश्न अति सटीक था, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, कृपया इसको ध्यान से सुनिए, जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो उसे उस व्यक्ति के मंतव्य अर्थात मिशन को जानना चाहिए। इसीलिए कृष्ण भावनामृत के भक्तों को कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन से पूर्णतया अवगत होना चाहिए, अन्यथा वे मूर्ख समझे जाएंगे। सारे भक्तों विशेषतया प्रचारकों को कृष्ण भावना मृत का दर्शन जानना चाहिए, जिससे प्रचार करते समय उन्हें उलझन तथा अपमान न सहना पड़े। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षधाय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारत्कंठयो सुरा।
हरे कृष्णा। छठे स्कंद के पहले अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। कैसे छठा स्कंद पोषण विषय को प्रकट कर रहा है कि भगवान अपने भक्तों का और पापियों का कैसे पोषण या रक्षा करते हैं, ये इस पूरे स्कंद का विषय है। और पहले अध्याय में, पहले तीन अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित करने वाले हैं और उसको प्रारंभ से ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने परीक्षा ले ली परीक्षित महाराज की। जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए कि आपने इतना सब बताया और फिर नरकों का वर्णन भी किया, कृपया कुछ उपाय बताइए, तो उन्होंने कहा पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, ये तो हाथी के स्नान की तरह है, व्यक्ति प्रायश्चित करता है फिर पाप करता है, प्रायश्चितम ये कैसा प्रायश्चित है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ज्ञान ले लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने उसमें भी सिर हिला दिया कि नहीं, ज्ञान भी नहीं, तो योग कर लेना चाहिए, तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च। परीक्षित महाराज उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अब भक्ति की श्रेष्ठता को कहना प्रारंभ किया।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं घुन्वन्ति शास्त्रे कास्त्रेन निहारमिव भास्करः।
तो तब उन्होंने शुरू किया और अब से लेकर तीनों अध्यायों में जो कथा है केवल भक्ति की श्रेष्ठता के लिए। तो उन्होंने कहते कहते ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कारी नहीं भी है, केवल भगवान की शरण चला जाता है, तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे। भले ही वो पापी क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम ले लेता है तो उसके पाप मिट जाएंगे। और उसको कहने के लिए वो अजामिल की कथा कहते हैं कि बड़ा पापी था और वृद्धावस्था में अपने पुत्र से, छोटे से पुत्र से आसक्त था, और फिर उस समय जब मृत्यु का समय आया तो बड़ा भयभीत हुआ। तीन यमदूत उसके पास आए लेने और उसने नारायण पुकारा और उसी समय विष्णु दूत आ गए। तो अब इन श्लोकों में आगे विष्णु दूतों का और यमदूतों का संवाद है, जिसमें अंत में अजामिल के इतिहास को कहेंगे यमदूत कि क्यों हम इसे ले जा रहे हैं। तो जैसे श्लोक में हमने देखा कि उन्होंने रोक दिया विष्णु दूतों ने और प्रश्न किया, क्योंकि यमदूतों ने कहा रहे आप हमें कैसे रोक सकते हैं, हम यमराज के दूत हैं, हमारे स्वामी हैं यमराज। तो यमदूतों ने कहा यमराज तुम्हारे स्वामी हैं तो धर्म तो जानते होंगे ना, तुम तो कह रहे हो कि वो धर्म करते हैं तो धर्म जानते होंगे, बताओ धर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म के लक्षण क्या है बताओ। और इतना ही नहीं, आप इसे दंड देने जा रहे हो तो ये बताओ कि कौन सा जीव दंड का अधिकारी है, किसे दिया जाना चाहिए दंड, क्या हर व्यक्ति जो कर्मकांड में लगा है दंड पाने का अधिकारी है, किसे दंड मिलना चाहिए। तो ये प्रश्न विष्णु दूतों ने किया, पहले तो आप ये बताओ, दंड तो बाद में देना, बताओ कि दंड दिया किसको जाता है। तो यमदूत उत्तर देने लगे, यमदूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। यमदूतों ने कहा कि आप धर्म और अधर्म को पूछ रहे हैं ना, तो बड़ा सरल परिभाषा है, धर्म वो है जो वेदों में निहित है, बस उसे धर्म कहते हैं, और जो भी उसके विपरीत है वो अधर्म है, ये हमने यमराज से सुना है। तुरंत विष्णु यमदूतों ने यह कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पूछेंगे अच्छा किसने कहा ये कि वेदों में जो कहा गया वो धर्म है और जो वेद उसके विरुद्ध है वो अधर्म है, ये कहां बताया गया। तो तुरंत उन्होंने कहा यह हमने यमराज से सुना है। ये बड़ा सरल मार्ग है हम लोगों के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने का, जब हम कुछ चीज कहें तो हमें तुरंत उसका प्रमाण देना चाहिए शास्त्रों से, मन की बात नहीं कहनी चाहिए। आपने कभी देखा है प्रभुपाद प्रवचन देते हैं मन की बात कहते हैं, 30 मिनट के प्रवचन में 26 श्लोक कहते हैं प्रभुपाद, एक एक बात कहते हैं उसके लिए श्लोक, हमारे मुरलीधर मुकुंद ने उस दिन गिने थे है ना, 35 मिनट का कितना 35 मिनट्स का लेक्चर था, 26 श्लोक कहे प्रभुपाद ने। ऑफकोर्स हर बार नहीं गिनना, ध्यान भी रखना लेक्चर पे। तो क्यों कहते हैं प्रभुपाद, प्रमाण देने के लिए, कोई कह नहीं सकता कि अरे ये तो प्रभुपाद के मन की बात है, नहीं मन की बात नहीं है। तो इसीलिए यमदूत कहते हैं कि हमने ये यमराज से सुना है। प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, ये धर्म है, ये नियम है, महाजनो ये न गतः सपन्था, हमें महाजनों के पथ पर चलना है, अपने मन की बात नहीं कहनी है। जैसे प्रभुपाद ने जो भी दोहराया जैसा कृष्ण चाहते हैं, एज इट इज यथारूप। तो धर्म क्या है, अपने मन से बनाया गया धर्म धर्म नहीं कहलाता। कलयुग में लोगों ने अपने मन के धर्म बना लिए हैं, ये धर्म है, मैंने जो कह दिया वो धर्म है। कोई व्यक्ति संस्था बनाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, कुछ थोड़े बहुत उसके अनुयायी हो जाते हैं, वो एक नया धर्म बना देता है और लोग भी उसका पालन करने लगते, ये धर्म है। वो कई नामों से जाने जा रहे हैं आजकल और बड़े प्रसिद्ध हैं वो लोग, वेदों को नकारते हैं, वेदों की सत्ता को नकारते हैं, भगवान को नकारते हैं, खुद का ही धर्म बनाते हैं, खुद के नियम बनाते हैं। ऐसे कई लोग हुए किसी ने नियम बना दिया संभोग से समाधि तक, बस समाधि चाहिए तो भोग करो, आनंद लो। वो भी मर गए, उनके अनुयायी भी खत्म हो गए, ना वो धर्म रहा ना वो संस्था रही। तो ये अपने मन से धर्म को नहीं बनाना चाहिए। धर्म क्या है? जो भगवान चाहते हैं बस, उसके विरुद्ध जो कुछ भी है वो अधर्म है। अर्जुन ने भगवान को धर्म सिखाने का प्रयास किया, अरे आप मुझे मारने को कह रहे हैं, ये मेरे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, धर्म कहता है मारना नहीं चाहिए, ये मेरे गुरु हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयोन भोक्तुम भैक्षम अपी हलोके, अरे गुरु को मारने से अच्छा तो मैं जाकर भीख मांगू, मुझे नहीं चाहिए ये जमीन, नहीं चाहिए ये राज्य। तो अर्जुन भगवान को धर्म सिखा रहा था, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। असली धर्म यही है कि ये सब भूल जाओ, तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, इसको पैक करो, फेंक दो नदी में। प्रभुपाद ये समझाते हैं कि जब हम प्रचार के लिए जाएं, लोगों की बात सुने, सुनना चाहिए, फिर उनको प्रेम से कहना चाहिए, ये सब जो आपका ज्ञान है इसको आप अलग रख दीजिए, अब जो बताता हूँ वो सुनिए, क्योंकि जो कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान है। तो इसीलिए यमदूतों ने कहा कि हमने ये धर्मराज से सुना है, हमने ये यमराज से सुना है, तो इसीलिए ये सत्य है। धर्म क्या है? वो कहते हैं धर्म ये है जो वेदों में निहित है। और वेद क्या है? जो यमदूतों का संवाद, यमदूत जो कह रहे हैं, वो मान लीजिए एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हों विष्णु दूतों के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई यही धर्म है। तो मानो विष्णु दूत ने पूछा, अच्छा ये वेद कहाँ से आते हैं? तो तुरंत अगला वो श्लोक में कहते हैं, वेद ये साक्षात नारायण हैं, ये वेद जो हैं ये भगवान से आते हैं और उनसे अभिन्न हैं, ये नारायण हैं, उन्होंने कहा। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जो वेद हैं ये भगवान की वाणी है, भगवान वेद बनाते नहीं हैं। ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने वेद बनाए, क्यों? क्योंकि वेद शाश्वत हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान सांस लेते हैं तो उनकी सांसों से वेद प्रकट होते हैं, जब भगवान बोलते हैं उनकी बातों से वेद प्रकट होते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं उनके शब्दों से वेद प्रकट होते हैं, वराह के रूप में वो आते हैं अपने बालों को झाड़ते हैं उनके बालों से वेद प्रकट होते हैं। तो क्योंकि भगवान शाश्वत हैं इसीलिए वेद भी शाश्वत हैं। इसीलिए वेदों को कभी हमें किसी के द्वारा बनाया गया नहीं मानना चाहिए, ये भगवान के द्वारा प्रकट किए गए शाश्वत नियम हैं जीव के लिए। तो उन्होंने कहा कि वेद भगवान बनाते हैं और भगवान से अभिन्न है। तो मानो प्रश्न हुआ कि अच्छा भगवान बनाते हैं तो भगवान है कहाँ? तो उन्होंने कहा, तो भगवान यहाँ कहीं हैं आपके पास? नहीं, भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं। अच्छा भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं तो फिर यहाँ कौन नियंत्रण करता है? तो उन्होंने कहा, भगवान वहीं बैठे बैठे सबका नियंत्रण करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को आने की, तो हमारे जैसे तुच्छ जीवों को आवश्यकता पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर नियंत्रण करने के लिए, भगवान को आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को आना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब भगवान गोलोक से यहाँ आते हैं तो गोलोक में ताला लगा कर आते हैं, भाई भगवान आ गए, हम लोग कहते हैं ना, मन में प्रश्न है कि नहीं? हम लोग कहते हैं साक्षात कृष्ण आए गोलोक से। तो कृष्ण आए मतलब क्या? कृष्ण आए मतलब उनके विस्तार नहीं, उनके अवतार नहीं, उनके कोई अंश नहीं, स्वयं कृष्ण आए हैं। तो स्वयं कृष्ण आ गए गोलोक से तो गोलोक में क्या हुआ? ताला लग गया। और अगर ताला नहीं लगा तो स्वयं कृष्ण नहीं आए, सही है ना? कृष्ण गोलोक में है। अब हम कहते हैं स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, तो स्वयं कृष्ण आ गए तो उनको गोलोक से आना चाहिए, और गोलोक से आना चाहिए तो गोलोक में लॉक लगा के आना चाहिए, सब व्यवस्था करके, डीटी वर्शिप वगैरह की, जैसे हम लोग यात्रा पे जाते हैं। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही कृष्ण नहीं आए, फिर हम क्यों कहते हैं कि वो ही साक्षात कृष्ण प्रकट हुए? क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर इतना ही है कि यही कृष्ण हैं जो एक समय पर कई स्थानों में रह सकते हैं, उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो भगवान जब गोलोक से आते हैं तो गोलोक खाली नहीं होता है, लॉक नहीं लगता है, वहां भी लीला चलती रहती है। और फिर अगर ऐसा होता तो भगवान तो हर ब्रह्मांड में जाते हैं, गोलोक तो हमेशा लॉक रहता, वहां पर लीला का क्या होता? वहां की लीला भी शाश्वत है। अगर वहां शाश्वत लीलाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, बंद नहीं होती, तो फिर जब भगवान यहां आएंगे तो बंद कैसे होंगी? लेकिन इसको आचार्यों ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि भगवान अपना विस्तार करते हैं और उनके विस्तार उनके ही समान होते हैं, कुछ विस्तार, सारे नहीं। तो जब हम कहते हैं कि साक्षात भगवान आए तो वही कृष्ण आते हैं, जैसे गोपियों के साथ जिन कृष्ण ने रासलीला रचाई, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए, तो क्या वो अलग अलग थे कृष्ण, उनके अवतार थे, क्या थे? नहीं, वही कृष्ण थे। 16108 रानियों के साथ जो कृष्ण रह रहे थे वही कृष्ण थे, एकात्म रूप वही कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण वो कहते हैं वही रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वहीं से सब नियंत्रण करते हैं। तो मानो प्रश्न हुआ कि अच्छा नियंत्रण करते हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन यहां पर जीवों को जो कष्ट मिल रहा है ये क्यों मिलता है? तो वो कहते हैं कि जीवों को तो कष्ट मिलता है, जैसे कभी कभी प्रश्न किया जाता है, हम लोग कहते हैं कि जिसको भी हमारे जो भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो कर्मों का फल है, तो भगवान देते हैं सबको कर्मों का फल, वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अपने धाम में, उनको क्या पता जीव क्या कर रहा है। कारवार के मंदिर में रहने वाला कोई भक्त मंगल आरती आया या नहीं आया भगवान को क्या पता, वो तो धाम में बैठे हैं, राइट? तो क्या कैसे पता चलेगा? तो जब यमदूतों ने, मानो विष्णु दूत ये प्रश्न कर रहे हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करो, भगवान को पता कैसे चलता है कौन से जीव ने क्या कष्ट सहा या कष्ट उसको देना चाहिए, क्योंकि यमदूतों ने कहा कि भगवान धर्म स्थापित करते हैं और इन धर्म का जो पालन नहीं करता उसको दंड मिलता है, जो पालन करता है उसको अच्छा फल मिलता है। तो कौन देता है, देखता कौन है, पहले ये बताओ। प्रभुपाद से एक बार एक ईसाई पादरी ने प्रश्न किया कि आप बोलते हैं सब कुछ कर्मों का फल है, देखता कौन है, साक्षी कौन है इसका? ऐसे ही जब आप लोग ने मन में कह दिया तो उसका उत्तर यमदूत देते हैं। वो कहते हैं विष्णु दूतों से, ये नहीं सोचना कि भगवान सामने नहीं है तो जीव पाप करेगा, उसका किसी को पता नहीं चलेगा, 13 साक्षी हैं। जीव को दंड देने के लिए, जीव की साक्षी देने के लिए कि हां इसने पाप किया है, 13 साक्षी हैं। सूर्य अग्नि खम मरु देवा सोम संध्या हनि दिशा, वो कहते हैं सारे कंकु स्वयं, ये 13 उन्होंने नाम लिए कि ये 13 साक्षी हैं। कौन कौन से? सूर्य साक्षी है पहला साक्षी। तो सूर्य तो सब जगह है, आप कहीं भी जा रहे हो तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य पहला साक्षी है। दूसरा अग्नि, अग्नि साक्षी है। हम लोग कहते हैं ना अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते हैं, जन्म जन्म का साथ, 3-4 साल में तलाक हो जाता है, हाँ? अग्नि साक्षी है। तो सूर्य साक्षी है, अग्नि साक्षी है, सूर्य अग्नि खम, खम यानी आकाश साक्षी है। अब सुनते जाइए ध्यान से, और फिर ये 13 सुनने के बाद सोचिएगा इसके अलावा कोई जगह है जहां पर मैं पाप कर सकता हूं जो मुझे नहीं देखता कोई? तो सूर्य अग्नि याद रखिएगा, अभी पूछने वाले हैं आपसे 13, हमें पता रहेगा तो कम से कम पाप नहीं करेंगे ना। सूर्य अग्नि खम, खम यानी आकाश, मरु यानी हवा, हवा चल रही है ना, हवा साक्षी है। आप कह सकते हो मैं कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके करूंगा, कोई आएगा सूर्य को कहां से पता चलेगा? तो सूर्य साक्षी नहीं हो सकता, अग्नि तो जलाऊंगा ही नहीं, ठीक है, अग्नि नहीं जलाई, खम आकाश, आकाश के नीचे नहीं करूंगा, कहीं धरती में घुसकर करूंगा पाप। अच्छा, आकाश भी नहीं, सूर्य अग्नि खम मरु, हवा तो आएगी, बिना हवा के जीवित कहां रहोगे, हवा तो आएगी। तो चलो कोई कहेगी मैं बिना हवा के करूंगा, हवा भी नहीं आएगी, तो देवा देवता है, तो सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, हवा हो गई, देवता है, देवता सब करते हैं। अन्य बहुत सारे देवता हैं, वो लोग हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग अधिष्ठाता देव हैं, तो वो सारे विटनेस कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। तो कोई कहे चलो वो भी नहीं, तो और कौन हुआ उसके आगे, सोम, चंद्रमा है। जैसे कोई कहे मैं दिन में पाप नहीं करूंगा, रात में करूंगा, जंगल में सोम, सारी किरणें गिर रही हैं, चंद्रमा देख रहा, तो सोम हो गया। अच्छा, उसके अलावा संध्या, शाम साक्षी है, हनी दिन साक्षी है, रात साक्षी है, दिशा दिशाएं साक्षी हैं, कम जल साक्षी है, कुह भूमि साक्षी है। कोई बचा जगह जहां पाप कर सकते हो? भूमि पे करोगे, हवा में करोगे, जल में करोगे, कहीं तो करोगे पाप, सब साक्षी हैं। कितने साक्षी हो गए? हाँ, 10, 12, ओके, 13वां साक्षी परमात्मा। उससे तो बच ही नहीं सकते, वो तो यहीं पर है, आप सोचते हो और उसको पता है। तो 13 साक्षी हैं, वो कहते हैं यमदूत कि ये 13 साक्षी ये प्रमाण देते हैं कि जीव ने पाप किया है। तो आप बताइए, पृथ्वी पर पाप करोगे, जल में करोगे, हवा में करोगे, आकाश में करोगे, या दिन में करोगे, रात में करोगे, संध्या में करोगे, कहीं तो करोगे, कुछ करोगे, साक्षी है। इसका अर्थ ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने छुप कर कोई पाप कर लिया किसी ने नहीं देखा। छोटे मोटे पाप ठीक है, महाप्रसाद चुरा कर खा लिया, वो अलग बात है, वो कोई देख भी लेगा तो कोई बात नहीं। पाप हम कहाँ करेंगे, पृथ्वी पे, आकाश में, वायु में, कोई ना कोई देख रहा है, साक्षी है। कहना चाहिए भगवान ने 13 पावरफुल कैमरे लगा रखे हैं और भगवान वहां बैठे हैं सामने, लैपटॉप बड़ा होगा जो भी, खैर तो वो सामने है भगवान के, और आप जहां भी कर रहे हो उनका चल रहा है। तो 13 और उनके बड़े पावरफुल कैमरे, खराब भी नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती वहां पर, ऐसा नहीं कि चली जाए, तो 13 पावरफुल कैमरे लगा रखे हैं, तो भगवान वहां से आराम से देख रहे हैं, और ये 13 लोग जाकर साक्षी देते हैं, हाँ इसने ये पाप किया, अच्छा ये दंड मिलेगा, इसने ये पाप किया, अच्छा ये दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी पाप करके बच सकते हैं। भारत की सरकार से आप बच सकते हो, कोई पाप किया किसी ने नहीं देखा, ठीक है, भारत की सरकार आपको दंड नहीं देगी क्योंकि मिले नहीं। भारत में नियम है, जब तक कोई प्रमाण नहीं हो, जब तक साबित नहीं हो इसने किया है, तब तक दंड नहीं दिया जाता। इसीलिए कई चोर बच जाते हैं क्योंकि साबित ही नहीं होता है, भले उसने मर्डर किया लेकिन कोई साक्षी नहीं है, बच जाते हैं। लेकिन भगवान की सिस्टम ऐसा, भगवान की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कहीं पर, और उनके तो रिश्वत भी नहीं लेते जितने साक्षी हैं, पृथ्वी को, जल को, वायु को, आकाश को रिश्वत नहीं दे सकते, सब इंफॉर्मेशन जा रही है। और अंत में स्वयं परमात्मा है, उनको क्या करेंगे हम। देखिए केवल ये सुनकर, एक श्लोक सुनकर हमें कितना सावधान हो जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं कोई देखता नहीं, कर ले पाप, नहीं, भगवान देख रहे हैं। तो यमदूतों ने कहा कि ये लोग जब प्रमाण देते हैं तब जीव को दंड दिया जाता है और जीव को ऐसे ही दंड मिलता है। तो इतना वो लोग 13 साक्षियों का वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो पाप करते हैं जीव, ये पाप करते हैं 3 गुणों के अधीन रहकर। जब तक व्यक्ति 3 गुणों के अधीन है, पाप करना अनिवार्य है, पाप होगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति तीन गुणों के अधीन और पाप नहीं कर रहा। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण सब में पाप करता है व्यक्ति। तो यमदूत कहते हैं कि पाप तो करेगा ही, और पाप करेगा तो दंड मिलेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लोग अलग अलग कार्य करते हैं और उनको अलग अलग उसका फल मिलता है, और उसके अनुसार उनको भावनाएं या उनको अनुभव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के कर्म के अनुसार उसको अच्छी योनि मिल गई, देवता योनि, तो देवता योनि मिलने से बड़ा प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। मनुष्य योनि मिलती है शोक करता है, ये योनियों के लक्षण हैं। और पशु योनि भय, पशु हमेशा भयभीत रहता है, मनुष्य हमेशा शोक करता रहता है, और देवता प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इन तीनों को मिलने से भी व्यक्ति के दुखों का नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि देवता बन गया तो सारे दुख समाप्त, मनुष्य बन गया तो दुख समाप्त, दुखों का नाश नहीं होता। और इसीलिए देवता यमदूत कहते हैं कि ज्ञान, ये जो ज्ञान है कि किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, ये वेदों में दिया गया है। तो वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि कैसे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को जो कुछ मिल रहा है इस जन्म में वो उसके पूर्व जन्मों का कर्म है, क्या प्रमाण है? तो वो कहते हैं कि जैसे ऋतुएं आती हैं, एक ऋतु को देखकर हम समझ जाते हैं कि पिछले समय जब ये ऋतु आई होगी तो उसमें क्या हुआ होगा, या आगे जो ये ऋतु आएगी उसमें क्या होगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण है, अगर आप लोग आंख खोलकर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण दिया कि ऋतुओं का, ऋतुएं आती हैं, जैसे वर्षा ऋतु आती है, तो अभी वर्षा ऋतु में क्या होगा हमें आज ही पता है, आने वाली वर्षा ऋतु में, या पिछली वर्षा ऋतु में क्या हुआ था हमें पता है, कैसे वर्षा हो रही है इसको देखकर, कि वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाली है, यह हमें समझ में आ जाता है। या फिर जब वसंत ऋतु आती है तो उसमें फूल खिलना इत्यादि, तो उसको देखकर हम समझ जाते हैं कि पिछली वसंत ऋतु में क्या हुआ होगा और आगे की वसंत ऋतु में क्या होगा, और वही होता है। हम लोग पहले से बता देते, जैसे आम का पेड़ है तो हम लोग अभी से पता है कि इस महीने में आम के पेड़ में फूल लगेंगे, फिर धीरे धीरे आम आने शुरू हो जाएंगे, और वही होता है। तो यमदूत कहते हैं कि जिस तरह पूर्व काल की ऋतुओं को जानने के लिए अब की ऋतु को देखकर पहचाना जाता है, इसी तरह जीव के जीवन में प्रसन्नता है, दुख है, या बीच की अवस्था है, इसको देखकर जाना जाता है कि इसने पूर्व काल में क्या कार्य किए होंगे, कौन से गुणों के अधीन रहकर कार्य किए होंगे। हम सब गुणों के अधीन रहते हैं और इसीलिए हमें अलग अलग योनि मिलती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कारणम गुण संगस्य सद असत योनि जन्मसु। ये जो जन्म मिलता है हमें अलग अलग सद असद योनि जो मिलती है, इसका कारण क्या है? गुण संगस्य, गुणों के साथ हमारा संपर्क होना, इसका ये कारण है। तो यमदूत कहते हैं कि सब कुछ कर्मों से होता है, व्यक्ति कर्म करता है और फिर उसको दंड मिलता है, और कौन जानता है क्या दंड देना है? हमारे यमराज जानते हैं, जो हमारे यमराज। अब वो उस बात पर आ रहे हैं कि क्यों हम इसे दंड दे रहे हैं, धीरे धीरे उस बात पर आ रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा समझा रहे हैं ताकि विष्णुदूत कोई प्रश्न नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि क्या दंड देना है? हमारे यमराज जानते हैं क्या दंड देना है। कैसे जानते हैं वो? क्योंकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त है, वो ब्रह्मा जी के ही समान शक्तिशाली हैं। यमराज, यमदूत कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली होने के कारण भगवान से संपर्क है, और परमात्मा की कृपा से वो जीवों के हृदय में क्या है उसको जान सकते हैं यमराज। और इसीलिए वो सद असद योनि में भेजते हैं, वो दंड देते हैं। तो इसीलिए हमें इसे दंड देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, अन्य जीवन पशु जीवन उसमें कोई दंड नहीं दिया जाता,
ये जान लीजिए, पशु को दंड नहीं मिलता। अगर पशु कुछ क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने नियम का पालन करता है। शेर मांस खाएगा, जो गाय है वो घास खाती है, वो अपने नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन केवल मनुष्य है जो नियम तोड़ता, बाकी सब देख लीजिए अपने अपने नियम में चले। तो पशु को कोई दंड, शेर अगर जाकर किसी प्राणी का शिकार करता है उसको कोई दंड नहीं मिलता प्रकृति के द्वारा। तो पशुओं को दंड नहीं दिया जाता, दंड मिलता है केवल मनुष्यों को। और इसीलिए मनुष्य जीवन बड़ी जिम्मेदारी का जीवन है। यमदूत कहते हैं इसमें ये जब जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए। फिर वो कहते हैं यमदूत कि मनुष्य जीवन में ही कर्मों के नियमों से बचा जा सकता। और उसके लिए वो कहते हैं कि जब व्यक्ति पाप करता है तो उसको दंड भुगतना अनिवार्य है, और ये अजामिल। अब वो इतिहास बताते हैं अजामिल का, कि आप जिसको बोल रहे हो कि हम नहीं ले जाएं, ये अजामिल शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा था। ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बचपन से भक्ति कर रहा था, नियम पालन कर रहा था, यज्ञ करना इत्यादि जो भी कार्य थे वो कर रहा था। एकदा एक बार वन में गया लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, यज्ञ के लिए, समिधा लाने के लिए। तो एक बार ये वन में गया और आते समय उसने देखा कि एक शूद्र और शूद्राणी, एक वैश्या, वो संग कर रहे थे खुलेआम। प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय में एक कहीं पर ऐसा दिखाई देता था कि लोग खुलेआम आलिंगन कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते आज के समय में तो, प्रभुपाद क्योंकि अमेरिका में थे, प्रभुपाद कहते आज के समय में तो इस सड़कों पर बहुत सारा कुछ दिखाई देता, उस समय ऐसा नहीं था, एकदा कहीं देख लिया, लेकिन आज तो ये बहुत सड़कों पे देखते हैं हम लोग। पहले जब बचपन में थे तो सुना करते थे कि पाश्चात्य जगत में ऐसा होता, हम लोग कहते हाँ। अभी तो भारत में ऐसा होता, कोई चिंता की बात नहीं, भारत भी प्रगति कर गया है। भारत की प्रगति क्या है? अमेरिका का पालन करना, बस वही प्रगति है। जो वो कर रहे हैं उसको करना। प्रभुपाद गए थे भारत की चीज को अमेरिका में देने के लिए, लंदन में देने के लिए। जब प्रभुपाद गए लंदन तो वहां पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी आप क्यों आए हैं यहां पर? प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग जब भारत छोड़कर आए तो कुछ चीज छोड़ आए थे वहां पर, वो देने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर, आध्यात्मिक सभ्यता उसको छोड़ आए थे आप। अब कोहिनूर तो ले आए हमारा भारत का, लेकिन ये छोड़कर आ गए थे, उसको देने आया। प्रभुपाद बहुत ऐसे ही बात करते थे। एक बार पत्रकारों ने पूछा लंदन में पहली बार प्रभुपाद गए, प्रभुपाद आपको लंदन कैसा लगता है? प्रभुपाद ने कहा लंदन नरक है, लंदन इज हेल। अगले दिन न्यूज़पेपर में स्वामी फ्रॉम इंडिया सेज लंदन इज हेल। सो यस, सही बात है, कोई गलत बात थोड़ी, ये सब करेंगे तो और क्या, नरक नहीं है तो और क्या। तो भारत भी अभी पीछे नहीं है, भारत भी प्रगति कर रहा है। तो ये जो अजामिल ने देख लिया गलती से एक शूद्र, तो कितना बड़ा उसका प्रभाव हुआ देखिए उसके जीवन पर। एक शूद्र शूद्राणी को उसने आलिंगन करते देख लिया। अब यहां से कुछ नहीं, 10 किलोमीटर थोड़ा आगे जाइए, 15 किलोमीटर गोवा शुरू हो जाता है। खैर भागवतम में वो सब वर्णन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बार वो आ रहा था, उसने देख लिया, तो शूद्र शूद्राणी आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे। ये देखकर उसका मन बड़ा प्रभावित हो गया, वो वहां से चला आया, लेकिन बहुत आकर्षित हो गया उस वेश्या के प्रति। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी काम वासना को उत्तेजित करने वाले दृश्य देख लिए। हालांकि यमदूत कहते हैं ये शास्त्रों को जानता था अजामिल, और बारंबार अपने को सिखा रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कामदेव इतने प्रभावी हो गए कि वो सब कुछ भूल बैठा। तो ये जान लीजिए हमारे लिए शास्त्र पढ़ना बहुत नहीं है। शास्त्र में पढ़ लिया ब्रह्मचारी को स्त्री को नहीं देखना चाहिए, अजामिल ने भी पढ़ा था नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? वही यमदूत कह रहे, पढ़ा था ये, जानता था और सिखा रहा था अपने आप को, शास्त्रों में लिखा है नहीं करना चाहिए, लेकिन सब कामदेव इतने प्रभावी हो गए। इसीलिए भक्ति में बने रहने के लिए कृपा चाहिए। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तुम्हार भक्ति अगर हमें करनी है तो निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। भक्ति विनोद ठाकुर कहते छोड़ दिया मैंने भरोसा अपनी भक्ति अपनी शक्ति पर, निज बल कोई भरोसा नहीं है मेरे मुझे, आपके चरणों के प्रति मैं आश्रय ले रहा हूं उस पर भरोसा। भक्ति में प्रगति, भक्ति में रक्षा इससे होती है, अपने बल से नहीं होती है। कितने हमने शास्त्र पढ़े, कितने वर्ष ब्रह्मचारी जीवन का पालन किया, कोई गारंटी नहीं है रक्षा की। माया का थप्पड़ आएगा पता भी नहीं चलेगा कहां गया व्यक्ति। तो गारंटी क्या है? कृपा। हमें याचना कृपा की करनी है। जो भक्त बड़ी नम्र सेवा करता है, बड़े ध्यान पूर्वक जप करता है, समर्पित भाव में भागवत श्रवण करता है, उसके लिए रक्षण निश्चित है। लेकिन जिसको अहंकार है अपने बल का, अपनी कला का, अपने ज्ञान का, उसके लिए कोई रक्षण नहीं है। इसीलिए अगर हमें भक्ति में रक्षण चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, तो हमें बड़े ही नम्र भाव से सेवा करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए और समर्पित भाव में श्रीमद् भागवत का स्मरण श्रवण करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक के लिए समर्पित भाव की परिभाषा अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए समर्पित भाव की परिभाषा आंख बंद कर कर सो जाना है, समर्पण, पूर्ण समर्पण, तो वो समर्पित भाव नहीं है। तो यमदूत ये कह रहे हैं कि इतना ये जानता था धर्म शास्त्रों को, लेकिन कामदेव इतने प्रभावी हो गए कि इसने उस वेश्या को अपने घर में नौकरानी रख लिया। घर में रहता था उस समय, उसकी सुंदर पत्नी थी, ब्राह्मण कुल का था, पिता से बहुत संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसने अपने उसको रख लिया घर में एक नौकरानी के रूप में, और इतना निर्लज्ज हो गया उस वेश्या की काम वासना के कारण कि उसने सब धन उस पर लुटाना शुरू कर दिया। उसको उपहार देना, उसको जो चाहिए वो लाकर देना, और निर्लज्जता इतनी बढ़ गई कि अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, पत्नी को भी उसने निकाल दिया। अब केवल वेश्या के साथ रहा, और वेश्या के जितने भी पुत्र थे, कलम वर्णन कर रहे थे, जितने भी जो भी लोगों से पुत्र हुए थे, सबको आ जाओ मेरा परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। और उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए, सबसे छोटा नारायण, कौन सी उम्र में? 88 साल की उम्र में। बताइए इससे पापी और व्यक्ति कौन हो सकता है? 88 साल की उम्र में 4-5 साल का लड़का है उसका। तो यमदूत कहने लगे कि इसने इतना किया, और फिर धन कम हुआ तो लोगों को जाकर धोखा देना, हत्याएं करना, धन इकट्ठा, चोरी, डाका, सब करने लग गए एक वेश्या के लिए। देखिए जब भी हमें जामिल की कथा सुनते हैं, केवल कथा नहीं सुननी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कितना बुरा व्यक्ति था जामिल, ऐसे कैसे किया उसने अपनी पत्नी को छोड़कर वेश्या के साथ फिर धोखा देना। हमें ये सोचना चाहिए हम कैसे हैं, कहीं हम तो अजामिल के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, कहीं हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की भावना को तीव्र करके पाप के मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए। जब हम अजामिल की, कितना अच्छा ब्राह्मण, और क्या हो गया? चोरी, डकैती, धोखा देना, पैसा लाना, शराब पीना, मांस खाना, सब करने लग गया। क्यों? काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पाया। अच्छी सुंदर पत्नी थी उसकी, ऐसा नहीं था कि चलो कोई कहे कि ब्रह्मचारी था बेचारा क्या करता, अच्छी सुंदर पत्नी थी उसकी, लेकिन काम वासना इतनी तीव्र कि सब छोड़कर एक वेश्या के पीछे और सब कुछ लुटा दिया, उसके सारा धन, और धोखेबाज हो गया, चोर हो गया, डकैत हो गया। इसी तरह हम सबको भी भगवान ने एक धन दिया है, भक्ति का धन, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो धन हमें भी दिया है। लेकिन हम लुटा देते हैं इस जगत की वेश्या पर। क्या है वेश्या? वेश्या का अर्थ क्या होता है? जो कभी किसी के साथ नहीं रह सकती, और इसी तरह इस जगत का सुख कभी साथ नहीं देता। चपल सुख लब लागी रे, चपल सुख है तो वेश्या की तरह है उस सुख के पीछे भागना, जैसे वेश्या के पीछे भाग रहा है जामिल और अपने सारे धन को लुटा देता है। हम अपनी भक्ति, अपनी संपत्ति को लुटा देते हैं। जीव की असली संपत्ति भक्ति है। ये सारा धन, ये तो समाप्त हो जाने वाला नश्वर चीजें हैं, कभी भी चला जाता है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देख लिया, 2 घंटे के अंदर सारे करोड़ों रुपया सब बेकार। लोग ढूंढ रहे कहाँ जाऊं, कहाँ से लाऊं। ये इस जगत का धन है, एक क्षण में कागज हो गया। तो इसीलिए असली धन हरि नाम, उसको लुटाइए नहीं इस जगत की वेश्याओं के ऊपर, इस जगत के दुर्जनों के ऊपर लुटाइए नहीं। भक्ति है उसको संभालिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। हमारे जीवन में धन चले जाना या अन्य कोई चीज चले जाना कोई बड़ी हानि नहीं है। भक्तों का संग छूटना, भक्ति चले जाना सबसे बड़ी हानि है। अजामिल मत बनिए एक ऐसे चपल सुख के लिए। अपनी भक्ति के धन को व्यर्थ मत कीजिए। कृष्ण को मत छोड़िए, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, कृष्ण को मत छोड़िए। स्वामी हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, छोड़िए नहीं उनको। और अजामिल ने छोड़ दिया, और यमदूत कहते हैं इतना ही नहीं, हम इतने पर भी उनको क्षमा कर सकते थे, लेकिन इसने प्रायश्चित नहीं किया। पाप किए, प्रायश्चित नहीं किया, इसीलिए हम इसे लेके जाएंगे। यमदूतों ने अपनी बात को अंतिम, तो देखिए ये बताने के लिए कि क्यों हम ले जाएंगे, यमदूतों ने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दिया उसको कि देखो इसलिए हम, और इसने इतना पाप करके भी प्रायश्चित नहीं किया। तो अब शुकदेव गोस्वामी अगले अध्याय में ये बताने वाले हैं विष्णु दूतों के द्वारा कि यमदूतों को कि जो आप कह रहे हो कि ये पापी है, एकदम सही है, इसने पाप किया, एकदम सही है, प्रायश्चित नहीं किया ये भी सही है, लेकिन इसको प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज को अगले अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। तो अगले अध्याय से विष्णुदूत कहेंगे और कैसे वो अजामिल की रक्षा करेंगे, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोटि का टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? यस। पाप और अपराध का डिफरेंस है, भक्ति में आने से पहले हम जो करते हैं वो पाप कहलाता है, भक्ति में आने के बाद जो वही चीजें की जाती हैं वो अपराध कहलाती हैं। तो जब तक व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो पापी है, लेकिन भक्ति में आ गया, भक्तों के संग में आ गया, गुरु की शरण ग्रहण कर ली, वचन दे दिया और फिर किया, वो अपराध है। बस इतना ही अंतर, दोनों नहीं करने चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद देना चाहते भद्रसेन प्रभु को, 3 दिन यहाँ पर रुके, आज वो जा रहे हैं। वैसे उनको एक क्लास उनको देनी थी, लेकिन उन्होंने हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें बिठा दिया कि बहुत दिन हुआ, देख रहे कि कुछ याद है कि नहीं, कुछ जो उन्होंने सिखाया था हमें बेलगाम में, तो देखने के लिए कि याद है कि नहीं, उन्होंने हमें बिठा दिया। तो आभारी हैं और आशा करते हैं बारंबार आएंगे धन्यवाद देने के लिए। 3 बार हरि बोल कहेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण।
ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶ ವಾಯು ದೇವತಾ ಚಂದ್ರಮ ಸಂಧ್ಯಾ